اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم اس کا جو چیپٹر پڑھ رہے تھے حواس کی تقسیم کے حوالے سے تھا، لیکچر نمبر 33، اس کا پیج نمبر 287، 287 پیج پہ غیب الغیب، یہ اس کا ذیلی عنوان ہے. اس سے پہلے ہم نے یعنی جو پڑھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلا سے بنایا، اس خلا میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، روح پھونکنے کے بعد علم الاشیاء یا علم شے عطا کیا. یہ بہت باریک نقطہ نہیں ہے، صرف اس کو سمجھنے کی دیر ہے. یاد رکھیں کہ روح پھونکنے سے مراد ہے کہ آدم کے اندر کچھ صلاحیتیں منتقل کر دی گئیں جو کہ اللہ کی اسپیشل ہیں، جو کہ اللہ نے کائنات میں کسی اور مخلوق کو نہیں دی. اور علم شے کا مطلب اشیاء کو بنانے اور ان کو کنٹرول کرنے کا، ان کی صفات کا علم عطا کر دیا. تو گویا آدم دو ایجنسیوں سے مرکب ہے، ایک روح ہے اور دوسرا علم شے. ایک روح ہے اور دوسرا علم شے. اب اگر روح ہے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ علم شے کا استعمال کرے گی. پر علم شے کیا ہے؟ یہ عالم فطرت ہے، اور عالم شہادت جو ہے یہ اصل میں زمانے متواتر ہے. جو عالم شہادت ہے یہ زمانے متواتر ہے، یعنی سیریل ٹائم ہے. اور جو زمانے غیر متواتر ہے اسے عالم غیب کہتے ہیں. جب عالم الشہادہ والغیب، اللہ یعنی کہ عالم ہے، جانتا ہے جو چیزیں سامنے ہیں اور جو چیزیں غیب میں ہیں، تو وہ اشارہ زمانے متواتر اور زمانے غیر متواتر کی طرف ہے. تو اس کی ایک ایکویشن یہ فرمائی کہ روح الہی جمع علم اشیاء، یہ عالم فطرت کو بنا رہے ہیں، زمانے متواتر اسے کہتے ہیں، اور یہی عالم شہادت ہے. اور آدم جو ہے یہ دراصل کیا ہے؟ روح الہی. اور روح کے اندر جو علم اشیاء یعنی تکوین کائنات، اب یہاں پہ کسی کے ذہن میں کوئی شبہ رہ گیا، رہنا تو نہیں چاہیے، کہ علم اشیاء جو ہے یہی اصل میں تکوین کائنات ہے. اب آپ غور کریں کہ جو لوگ کتابیں یہ پڑھ کر حضور مرشد کریم کی ذہنی طور پہ سٹک جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تکوین کے بارے میں کچھ پڑھ رہے ہیں، تو وہ اس حد تک تو بجا ہے کہ وہ علم اشیاء کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا انہیں اشیاء کا علم پوری طرح حاصل ہو گیا یا وہ محض اس مغالطے کا شکار ہے؟ تو وہ مغالطہ ہونے کے بعد جو ہے وہ بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو بہرحال ایکویٹ یہ کیا کہ روح بھی ہو اور ساتھ میں اس میں علم شے بھی ہو تو پھر آدم بنتا ہے. آدمی نہیں، آدمی آدم کا ریپلیکیشن ہے بغیر علم اشیاء کے، اور شاید بغیر روح کے بھی، کیونکہ یہ سب سے حیوانی درجہ ہے، پھر اس کے بعد انسان ہے اور پھر آدم ہے. تو آدم اصل میں خلا ہے، خلا میں روح ہے، روح میں علم اشیاء ہے، علم اشیاء عالم فطرت ہے، اور عالم فطرت زمانے متواتر ہے، اور زمانے متواتر جو ہے یہ اصل میں قائم ہے زمانے غیر متواتر پر، اور زمانے غیر متواتر جس کو عالم الغیب کہتے ہیں وہ در حقیقت قائم ہے زمانے حقیقی پر. اور زمانے حقیقی जमाने मतवातर और जमाने गैर मतवातर, ये तीन जमाने हुए। यानी अब ये तीन जमाने दरअसल उस तरह हमारे माजी मुस्तकबिल और हाल नहीं है जिस तरह से हम और आप लेके बैठे हुए हैं या समझे बैठे हैं। जमाने हकीकी वो लम्हा हकीकी है और उसके बाद उसकी दो हालतें हैं, उसी को गैबुल गैब कहा है। जरा ये नुक्ता समझने का है। जमाने मतवातर वो जमाना है जिसमें हम आलम नासूत में जिंदगी गुजार रहे हैं। इस जमाने में हवास हर आन तकसीम हो रहे हैं। मुनकसिम हवास के जमाने को जमाने मतवातर कहते हैं। ये हम बेदारी में देखते हैं कि घड़ी की सुइयां किस तरह एक एक सेकंड करके आगे बढ़ती हैं। हर काम को हम इस पैमाने से नापते हैं। यानी अगर हमने ये किला ये पढ़ना 9 बजे शुरू किया तो 10 तब तक नहीं बज सकते जब तक के 9:01, 2 मिनट, 3 मिनट करते करते 60 मिनट पूरे नहीं हो जाएंगे और इसी तरतीब से होंगे तब जाके 10 बजेंगे। लेकिन एक दूसरी सतह जो हवास की है उसमें हमने सोचा कि 10 बज गए तो 10 बजे मैं ये करूंगा या ये होगा, तो गोया हमने स्किप कर दिया। या जैसे हम माजी को सोचते हैं कि वो जो मैट्रिक में टीचर मुझे मैथ्स पढ़ा रहा था या पढ़ा रही थी, वो टीचर ये उनका नाम था, अब ये उनकी अहलिया था, तो गोया ये क्या किया हमने, वो 20-25-30 साल पहले का एक टीचर जो है वो हादसे में उभर आया। तो ये जमाने गैर मतवातर की मिसाल हो गई। तो नजर आने वाली कायनात के तमाम अफाल और हवादिस को हम जमाने मतवातर के पैमाने से नापते हैं, सीरियल टाइम से नापते हैं। और जिंदगी का कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है जो कायम हो, हर लम्हा मुतगैर है। हम ये बात जानते हैं कि हम कदम उठाने के बाद दूसरा कदम उठाते हैं तो पहला कदम मुतगैर हो जाता है, तब दूसरा कदम उठता है। जरा सी ये मिसाल है, आपने जब भी चलते हैं हम कहीं कदम उठाते हैं तो एक कदम हटाते हैं अपनी जगह से तो दूसरी उसको आगे बढ़ा के या पीछे हटा के जहां पे भी रखते हैं। तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक फासला और एक टाइम। यानी एक कदम को एक पैर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने में कुछ तो फासला तय होता है और कुछ वक्त सर्फ होता है। अब ये जो वक्त सर्फ होना है ये जमानियत है और ये फासला जो है ये असल में मकानियत है। अब ये मकानियत और ये जमानियत मिलकर क्या बने, असल में खिलाएं, क्योंकि जब पांव जमीन पे नहीं है और हवा में लटक रहा है तो वो पीरियड जो है टाइम का, वक्त का, लम्हे का, वो असल में खिला है, एक वॉइड है। तो ये जो है जब हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कदम उठाते चले जाते हैं, वो असल में सब लम्हात का तगैयर है। यानी जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें तगैयर ना हो। तो हर लम्हे की वारदात यानी हर लम्हे के अंदर जो कैफियात और इतलात वारिद हो रही हैं उनको वारदात कहते हैं। ये वो पुलिस वाली जबान में वारदात नहीं है। हर लम्हे की वारदात और जिंदगी के हवादिस, हादसे, हदस कहते हैं किसी चीज का वकू पजीर होना। अंग्रेजी में इसका तर्जमा हैपनिंग है लेकिन बस लोग हम इसे हादसा उर्दू में एक्सीडेंट के मानों में लेते हैं। यानी कि एक हैपनिंग है जो कि वी डोंट वांट टू हैपन इट बट इट हैज हैपन्ड। तो ये वारदात और हवादिस जुदा जुदा हैं। और हर हादसा क्या लिखा है ब्रैकेट में, कैफियत, हर कैफियत के दरमियान एक फासला है। जब हम एक कदम के बाद दूसरा कदम उठाते हैं तो एक कदम का दूसरे कदम में जाना ये तगैयर है, और एक कदम के बाद दूसरा कदम फासला है। यानी ये जो बात मैंने अर्ज की कि टाइम एंड स्पेस दोनों इसमें कैसे नजर आते हैं, कि हम जब कदम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं तो दरअसल हम कुछ फासला भी तय कर रहे हैं और कुछ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। फर्ज करें कि एक कदम आपने एक सेकंड में लिया तो 10 कदम लेने में 10 कदम का फासला तय हुआ और साथ में 10 सेकंड स्पेंड हुए। तो ये जो है ये तगैयर से गुजरे। अब आलम गैब को जानने के लिए रूह को समझना जरूरी है, क्योंकि आलम गैब का इंशराह रूह में होता है। आलम गैब का इंशराह यानी उसकी शरह जो है यानी वो खुलता है। आलम गैब खुलता है कहाँ? रूह में। अब रूह से क्या मुराद है? रूह से मुराद है लाशऊर। अगर हम आलम गैब को जानना चाहें या चाहते हैं तो जरूरी है कि शऊर की दुनिया से निकलकर लाशऊर की दुनिया में दाखिल हो जाए, क्योंकि शऊरी दुनिया के हवास में रहते हुए गैब से आशना होना मुमकिन नहीं है। इसलिए जरूरी है कि जमाने गैर मतवातर यानी नॉन सीरियल टाइम से निकलकर हम सीरियल टाइम से निकलकर नॉन सीरियल टाइम में दाखिल हो जाए। अब जमाने हकीकी जिस पे ये दोनों बेस करते हैं वो इल्मे इलाही है, वो है अल्लाह का इल्म। यानी बराह रास्त जब आप अल्लाह के इल्म को वो जो इरादे में लम्हा इरादा करते वक्त जो लम्हा जिसमें पूरा प्रोग्राम कैप्चर है वो इल्मे इलाही है, वहां अगर पहुंच गया जेन तो वो जमाने हकीकी है। फिर वहां से आप तगैयर और तबदल से सबसे निकल गए और जमाने हकीकी इल्मे इलाही है और इसको गैबुल गैब कहते हैं। जमाने गैर मतवातर फरिश्तों की दुनिया है और इसको इस्तलाह में गैब कहा गया। शौरी दुनिया यानी जमाने मतवातर से निकलकर बंदा जब लाशौरी दुनिया में दाखिल हो जाता है तो उस पर गैब मुनकशिफ हो जाता है और फरिश्तों की दुनिया सामने आ जाती है। जिस तरह आदमी शौरी दुनिया में रहकर शौरी दुनिया का मुशाहिदा करता है उसी तरह सालिक लाशौर में दाखिल होकर फरिश्तों को देखता है। इसका एक एक लफ्ज समझ लीजिए। देखिए तीन ही तो जोन है, एक आदमी का जोन है, एक फरिश्तों का जोन है और एक ऊपर अल्लाह का जोन है। हमने अगर अपने जमाने मतवातर में रहके हुए जिंदगी बसर कर दी, हालांकि अल्लाह का निजाम ऐसा है कि हम हर रोज कुछ ना कुछ देर के लिए सोते जरूर है, सोने की हालत में जो हालत तारी होती है वो सब जमाने गैर मतवातर है और वो असल में फरिश्तों की दुनिया है, आलम मलाकूत कहलाती है। फिर आगे उसके दर्जे हैं, जैसे इस मादी दुनिया के जोन जैन दर्जे हैं, आपकी उम्र का बचपन लड़कपन फिर नौजवानी फिर जवानी फिर उधेड़ उम्री फिर बुढ़ापा, ये सारे दर्जात मादी जोन के हैं। इसी तरह आलम में मलाकूत के भी दर्जात हैं। अब हम उनसे किस दर्जे पे आशना होते हैं या बिल्कुल आशना नहीं होते, या आशना होकर जो ही आँख खुलती है नींद से बेदार होते हैं और ब्लैंक होते हैं, यानी हमें कुछ याद ही नहीं रहता कि हम कहाँ थे। तो जब तक इन दोनों हालतों पे कमांड नहीं हासिल हो जाती, आप ख्वाब के हवास से पूरी तरह आशना नहीं हो जाते, गैर मुनकसिम हवास से वाकिफ नहीं हो जाते, तो आप उस हवास से काम लेकर ऊपर की सतह पे इल्मे इलाही तक नहीं पहुंच सकते। इसको कहते हैं सोते में जागना, यानी हम सो भी रहे हैं और जाग भी रहे हैं, या बालफाजे दीगर हम जागने में सो रहे हैं। यानी ये कैफियत एक जहन की कैफियत, और ये आती है लगातार जागने से। मुसलसल जो लोग ज्यादा जागते हैं उन पे इंकशाफात ज्यादा होते हैं। और ये मादी दुनिया के लोगों पे भी कानून लागू है। एक बंदा गुजरा टेस्ला, जिसने आज से कोई 100 साल पहले ये रिमोट सिस्टम और ये बेतार बरकी यानी सिल्की निजाम के तहत बिजली की तरसील मुमकिन कर दी थी। उसने ये तारों के जरिए कहा कि बिजली नहीं, बराह रास्त वैसे भी जैसे ये टीवी के प्रोग्राम बगैर तार के नशर हो रहे हैं, जैसे ये मोबाइल की हमारी आवाज की लहरें बगैर तार के एक दूसरे तक पहुंच रही, उसने कहा बिजली भी ट्रांसफर हो सकती है। अब ऐसे ऐसे इजादात वो कर भी गया, तो इसलिए क्योंकि वो उसकी सवाने उम्री पढ़े तो पता चलता है कि वो 21-22 घंटे से ज्यादा सोता ही नहीं था। तो बहरहाल ये बात मैंने इजाफी बता दी कि शऊर के बिल मुकाबिल गोया दो एजेंसी हैं हमारे, इस शऊर के मुकाबिल दो एजेंसी हैं, एक गैब और दूसरी गैबुल गैब। आलम में गैब के लम्हात से हमारा शऊर नावाकिफ है, आलम में गैब के लम्हात से। देखें बात वही है कि ये तीन दर्जे हैं, उनको किस किस तरह और किन किन लफ्जों से बयान किया गया ताकि हमारे जहन में उनके हवाले से उनकी कैफियत, लेकिन हमने इसको अपने अपने फहम के मुताबिक मुख्तलिफ स्लॉट्स में वो अलमारी के ऊपर कहीं रख के तो ताकि निसियां यानी भूल के खाने में रख दिया तो वो गड़बड़ हो गई। तो आलम गैब के लम्हात से हमारा शऊर नावाकिफ है, लेकिन रूह आगाह रहती है। अब गैबुल गैब जमाने हकीकी है, उस ला तनाहियत के मुकाबिल में तनाहियत है, और हर तनाहियत की माहियत को इल्म कहा जाता है। अब जरा गौर करें कि लफ्ज ये जुमला के एक आलम है ला तनाहियत का, उसे गैबुल गैब कहा, ला तनाहियत यानी उसमें कोई इंतहा नहीं है, किसी भी चीज की हद नहीं है, डिमार्केशन नहीं है, और वही जमाने हकीकी है। अब उसके बराबर यानी उसके सामने तनाहियत है, यानी उसके मुकाबिल हदबंदी हो गई। जब हदबंदी हो गई तो हर तनाहियत की माहियत को इल्म कहा जाता है। गोया जब किसी भी चीज की डिमार्केशन की बनावट हमारी समझ में आ जाती है तो उसको हम इल्म कह देते हैं। ये है इल्म की असल डेफिनेशन। आप और हम तो इल्म जानने को कह रहे हैं ना, लेकिन क्या जानना? तनाहियत की माहियत को जानना, या ये इल्म कहलाता है। हर तनाहियत की माहियत को ही इल्म कहा जाता है, और यही वो इल्म है जो ला तनाहियत के अंदर तजस्सुस करता है। अब गोया इल्म एक हस्ती हुई, इल्म असल में एक हस्ती है, इल्म भी एक हस्ती है, एक तो चीज एक हस्ती है, एक उसको जानना ये भी, जब किसी चीज को जान लिया जाता है तो ये इल्म भी एक हस्ती बन जाती है। अब गौर करें आप क्या कहते हैं, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, मुझे इल्म है का लफ्ज आ गया यानी हस्ती होना। तो इल्म एक ऐसी हस्ती है, ये देखिए कि इंसान आप और हमने कभी नहीं सोचा, मुझे पूरा यकीन है कि इस जुमले को यहां पढ़ने से पेशतर हमने कभी नहीं समझा कि इल्म वाकई कोई ऐसी हस्ती है। हम समझते हैं कि इल्म होना क्वालिटी है। और करें लफ्ज क्वालिटी, मुझे मालूम है यानी हम कहते हैं ये बंदा आलिम है, ये बंदा इल्म की इल्म से आगाह है, लेकिन यहां पे रूहानी बंदा क्या देख रहा है कि इल्म एक हस्ती है, और वो हस्ती की खूबी क्या है कि वो अफहम तफी में लगी रहती है। ये है इल्म, वो बात को समझने और समझाने में लगी रहती है, अफहम तफहीम, किसी चीज की फहम में कोशां रहती है, किसी चीज को समझने में जुटी रहती है। और इल्म की हस्ती क्या करती है, ये ला तनाहियत की रोशनियों को मालूम करने में दिलचस्पी रखती है, यानी उसके अंदर ये जो इल्म की हस्ती है उसमें एक फितरी उसका ट्रेट या उसकी क्वालिटी या उसकी खूबी रख दी गई के वो लातनाहियत की रोशनी को मालूम करने में दिलचस्पी रखती है, यानी उसका मिलान इस तरफ है कि वो लातनाहियत में दाखिल हो, लातनाहियत से मस में रहे। तो इल्म की हस्ती तलाश करते करते जिस रोशनी को पा लेती है, लातनाहियत की रोशनियां क्या हैं? तसव्वुरात हैं। जब हमारा किसी चीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम कहते हैं कि मुझे मालूम हो गया, मुझे पहले से ज्यादा बेहतर समझ आ रही है। और करें तो इल्म की हस्ती तलाश करते करते जिस रोशनी को पा लेती है उसको अपने अंदर जज्ब कर लेती है, यानी वो तसव्वुर जहां तक वो पहुंच जाती है, यानी इल्म की हस्ती जहां तक पहुंच जाती है, जिन तसव्वुरात को वो पकड़ लेती है उनको अपना भी लेती है, अपने अंदर जज्ब कर लेती है। गौर करें जिस रोशनी को पा लेती है उसको पकड़ लेती है, उसको अपने अंदर समेट लेती है, उसको अपने अंदर जज्ब कर लेती है। और ये रोशनी मुस्तकिल नक्श बनकर पैवस्त हो जाती है, और वो तसव्वुरात चूंकि इल्म के अंदर मुस्तकिल जगह बना लेते हैं एक नक्श की सूरत में, लिहाजा वो इल्म की हस्ती का हिस्सा बन जाते हैं। इस बात को फिर समझिए। नौ, जब फर्द की हैसियत में होती है तो जमाने मतवातर है। अफराद की हस्ती यानी कुन्हा, अफराद की हस्ती यानी उनका होना या उनकी कुन्हा उनकी जड़, ये जमाने गैर मतवातर। हर नौ ये जानती है कि मैं इंसान हूं, फरिश्ता हूं, जिन्नात हूं, पहाड़ हूं, घास हूं, दरख्त हूं। नौ की मौजूदगी का ये इल्म, अभी इल्म की डेफिनेशन आ गई, अब ये अपनी मौजूदगी का ये इल्म कहां से मुंतकिल होता है? ये जमाने हकीकी से मुंतकिल होता है। नौ जब उस इल्म को दोहराती है तो कायनात के अफराद अलग अलग हो जाते हैं। गौर करें, नौ के अफराद, नौ के अफराद, यानी नौ जब इल्म को दोहराती है, नौ इल्म को दोहराती है तो कायनात के अफराद अलग अलग हो जाते हैं। यानी आदम और हव्वा ये एक नौ है, जब इन्होंने खुद को दोहराया यानी रिपीट किया यानी रिप्रोड्यूस किया, ये रिप्रोडक्शन असल में रिपीटेशन है। कोई भी चीज जो खुद को दोहरा रही है वो असल में खुद को रिवाइज कर रही है या रिप्रोड्यूस कर रही है। ये रिप्रोडक्शन जो है ये तख्लीकी निजाम का हिस्सा इस तरह से है कि नौ खुद को दोहरा रही है। अब जमीन पर बकरी की नौ इसलिए मौजूद है कि बकरी खुद को बरकरार रखने के लिए अपने नौई इल्म को दोहराती है। यानी बकरी का बच्चा पैदा हुआ तो असल में क्या हुआ? बकरी की नौ ने खुद को बरकरार रखने के लिए अपने इल्म को दोहराया। ये अंदाजे नजर देखिए, ये अंदाजे नजर है जो हमें हासिल करना है कि वो बच्चे को पैदा होते देख के तो ये नहीं करते कि जी ये कोई बहुत ही बेशर्मी की बात हो गई। वो क्या कहते हैं कि ये इल्म का दोहराया जाना है। जमीन पर बकरी की नौ इसलिए मौजूद है कि बकरी खुद को बरकरार रखने के लिए अपने नौई इल्म को दोहराती रहती है। इल्म का दोहराना ही नौई अफराद की मौजूदगी का जामिन है। अगर बनी नौ आदम अपने नौई इल्म को ना दोहराए तो कोई फर्द दुनिया में मौजूद ना हो। जहां पे नौई शऊर अफराद में काम करना बंद कर देता है, वहां ये क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। जैसे अक्सर होता है कि जी वो औलाद नहीं पैदा हो रही, वजह ये कि वो नौ जो है वहां पे उस फर्द के अंदर वो नौई शऊर खुद को रिवाइज नहीं कर रहा। इसके फैलाव इस दर्जे पे है। और इल्म का दोहराना अफराद की मौजूदगी का जामिन है। नौ का इल्मी एतबार से खुद को दोहराना एक तरफ तनाहियत है और दूसरी तरफ लातनाहियत है। दोबारा सुने, इल्म का दोहराना, इल्म एक हस्ती है, उसका खुद को रिवाइज करना, खुद को रिपीट करना, खुद को रिप्रोड्यूस करना, ये नौई अफराद की मौजूदगी का जामिन है। और नौ का इल्मी एतबार से खुद को दोहराना एक तरफ तनाहियत है, दूसरी तरफ लातनाहियत है। कैसे? अब ये इल्मी एतबार से खुद को दोहराना, जब एक बच्चा पैदा होता है वो एक तरफ लातनाहियत है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी जगह से बरामद हो रहा है जहां से हदबंदी नहीं है, जहां कोई हदबंदी नहीं है, अल्लाह के जहन में से, अल्लाह के जहन में वहां कोई हदबंदी नहीं। इल्म वो हस्ती है जो लातनाहियत में तजस्सुस करती है। और क्या हो रहा है कि नौ का इल्मी एतबार से दोहराना एक तरफ तनाहियत है और दूसरी तरफ लातनाहियत है। जब वो रिवाइज कर रही है तो वो असल में डिमार्क कर रही है दोबारा लातनाहियत को। लातनाहियत को डिमार्केशन यानी के हदबंदियां बना रही है, तनाहियत में मुंतकिल कर रही है, और दूसरी तरफ वो खुद लातनाहियत है। यानी एक तरफ वो तनाहियत बना रही है, और कहां से बना रही है? भाई लातनाहियत से बना रही है। तो वो लातनाहियत जिसमें कोई इंतहा नहीं है, कोई डिमार्केशन नहीं है, ये है इल्म का दोहराना, उसकी भी असल बता दी। अब एक बात समझ लें, नंबर एक, टाइमलेसनेस या रियल टाइम, इसको जमाने हकीकी कहते हैं। दूसरा है नॉन सीरियल टाइम, जिसको जमाने गैर मतवातर कहते हैं। और नंबर तीन है सीरियल टाइम। जमाने हकीकी क्या चीज है? ये वराए ला शऊर है, वराए ला शऊर, शऊर से ऊपर की दुनिया, इसी का नाम है इल्मे हजूरी, और इसी को गैबुल गैब कहा है, इसी को ला तनाहियत कहा है, इसी को नूरे मुतलक कहा है। कितने नाम जमाने हकीकी के गिने जरा। वराए ला शऊर एक, इल्मे हजूरी दो, गैबुल गैब तीन, ला तनाहियत चार, और पांचवा है नूरे मुतलक। अब जमाने गैर मतवातर क्या है? ये है रूहानी दुनिया, इसी का नाम है ला शऊर, और इसी का नाम है आलमुल गैब, इसी का नाम है आलम तिमसाल, और इसी को नूरे मुरक्कब कहा, और इसी को आलम मलाकूत भी कहते हैं। ये अल्फाज यहां नहीं लिखे हुए, लेकिन जो पीछे हमने पढ़ा उसकी रोशनी में ये मैंने अर्ज कर दिया। अब जमाने मतवातर क्या है? शौरी दुनिया, या हमारे नस्मा मुरक्कब को आलम तखलीत भी कहते हैं, इसी को आलम नासूत भी कहते हैं। तखलीत, खल्त मल्त होना, यानी दो चीजें आपस में मिक्स हो रही हैं। यहां पे मादा और ख्याल मिक्स हो रहे हैं, इसलिए इसे आलम तखलीत कहते हैं। और आलम नासूत ये मादी दुनिया को, अंसरी मखलूक, आलम फितरत, और इसी को आलम शहादत कहते हैं। ये हैं असल में मुनकसिम हवास, और उससे ऊपर जो है वो गैर मुनकसिम हवास हैं, और उससे ऊपर जो है वो लातनाहियत है। वहां पे हर चीज वहदानियत की सूरत में मौजूद है, हर चीज एक ही नुक्ते में बंद है, वो एक ही नुक्ता है। वहां पे हिस भी और जिस चीज को महसूस किया जा रहा है वो भी, हिस को इस्तेमाल करने की सलाहियत भी और बजाते खुद हिस भी, सब एक ही नुक्ते में मर्ज है। खदो खाल की अदम मौजूदगी ये महज एहसास है और इसी का नाम जमाने हकीकी। अब मजीद कोई कसर नहीं छोड़ी हजूर मुर्शिद करीम ने यह बात समझाने में कि जमाने हकीकी क्या है, एक स्टेट है जिसमें खदो खाल मौजूद नहीं है, इसी का नाम है ला तनाहियत। इसकी मैं मिसाल अर्ज करता हूं, पहले दो जुमले और पढ़ लूं कि नौ और नौ के अफराद से आगही ये जमाने गैर मतवातर है और अरबों खरबों दुनियाएं जो टाइम की गिरफ्त में हैं ये जमाने मतवातर हैं। अब आप देखें ना, एक लाइन एक नुक्ता है, उसमें से एक लाइन बरामद हो रही है, वो लाइन जब लहर की शक्ल इख्तियार कर लेती है, अब आप उससे अल्फाज बना रहे हैं या उसको, अब वो नुक्ता जो है वो जमाने हकीकी है, वो जो लकीर बन रही है सीधी वो जमाने गैर मतवातर है, और जहां पे उसमें लहर पैदा हो गई वहां लहरों का निजाम जेरे बहस आ गया, वहां टाइम एंड स्पेस जेरे बहस आ गया। ये आसान कर दिया इस सारी बात को, ये बहुत हैवी बात थी जो समझने में दुश्वार लग रही थी, लेकिन देख लीजिए कि हजूर मुर्शिद करीम ने इस बात को कितना सहल कर दिया। ये सहल इसलिए हो गई क्योंकि ये मुबाहिस जो हैं, ये बहसो तमहीस जो है, इसको हर बंदा अपने अपने जाविया नजर से इस पे बात करता है, लेकिन जब तक हम अपने अपने जाविया नजर से हटकर बात को असल नहीं समझेंगे तो इस बात इतनी सी है कि एक नुक्ता है उसमें से जब आप सीधी लाइन बना रहे हैं तो वो, और फिर उसके बाद वो लाइन जो है वो वेवी हो गई, उसमें वेव्स पैदा हो गई, ये है तीन दर्जे जमानियत के, जो असल में तीन दर्जे हैं। हम इसको जिस तरह से माजी मुस्तकबिल और हाल लेते हैं वो नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा स्टेट ऑफ, एक ऐसी कैफियत है जहां पे कोई खदो खाल नहीं है, एक ऐसी हालत जिसे लातनाहियत कहा गया जिसमें कोई खदो खाल नहीं है, वो है जमाने हकीकी, और वो दूसरी स्टेट है जहां पे वो एक सीधी लाइन चल रही है, वहां पे उसे नौ कहा गोया। ये अब इनफरादी सतह पे जमाने मतवातर, नौई सतह पे जमाने गैर मतवातर, और फिर कायनाती सतह पे ये जमाने हकीकी हो गया। तो यहां पे ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो जमाने गैर मतवातर और इल्मुल अस्मा के हवाले से, वो इंशाल्लाह कल हम मुताले ठीक हो गया जी।